अध्याय 34 वे 12 गुप्तचर। ये अध्याय गिनती 13 और 14 पर आधारित है। होरेब पर्वत से प्रस्थान करने के पश्चात इब्री सेना ने परान के भीड़ में कादेश नामक स्थान में पड़ाव डाला, जो कनान की सीमाओं से दूर नहीं था। यहां लोगों ने प्रस्ताव रखा कि उस देश का निरीक्षण करने हेतु गुप्तचरों को भेजा जाए। मूसा द्वारा इस विषय को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और इस निर्देश के साथ कि इस कार्य के लिए प्रत्येक गोत्र से एक एक प्रधान को चुना जाए, उसे अनुमति दे दी गई। निर्देशानुसार पुरुषों को चुना गया और मूसा ने उन्हें आदेश दिया कि वे जाकर उस देश को देखें कि वो कैसा था, उसकी स्थिति और प्राकृतिक अनुकूल परिस्थितियां क्या थीं, और वहां बसे हुए लोग बलवान थे या निर्बल, थोड़े थे या अधिक, और ये भी देखे कि उस देश की मिट्टी उपजाऊ है या बंजर, और ये कि वो उस देश का कोई फल भी अपने साथ लेकर लौटें। दक्षिण सीमा से प्रवेश करते हुए उत्तरी सीमा तक वे गए और देश का निरीक्षण किया। 40 दिन पश्चात वे लौट कर आए। इसराइली ऊंची आशाएं संजोए हुए अपेक्षाकृत होकर उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुप्तचरों के लौटने की सूचना एक गोत्र से दूसरे गोत्र तक पहुंचाई गई और उसे आनंदपूर्वक ग्रहण किया गया। जो संदेशवाहक अपने खतरनाक कार्य के खतरों से सुरक्षापूर्वक बचकर निकल आए थे, उनसे मिलने के लिए लोग उमड़ पड़े। गुप्तचर उस फल के नमूने लेकर आए जो मिट्टी के उपजाऊ होने का प्रमाण थे। वे अंजीर और अनार भी लेकर आए जो वहां बहुतायत से होते थे। अंगूरों के पकने का समय था। वे दाखों का एक गुच्छा ले आए जो इतना बड़ा था कि दो व्यक्ति उसे लाठी पर लटका कर लाए। लोग प्रसन्न थे कि वे इतने समृद्ध देश को प्राप्त करने वाले थे, और उन्होंने वृतांत को इतना ध्यानपूर्वक सुना कि एक शब्द भी अनसुना नहीं हुआ। गुप्तचरों ने बताया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। वे लोग जोशीले थे। वे उत्साहपूर्वक परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर तत्काल ही उस देश में बसने के लिए चले जाते। लेकिन देश के सौंदर्य और उपजाऊपन का वर्णन करने के पश्चात दो को छोड़ सभी गुप्तचरों ने इसराइलियों के सम्मुख कनान पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में आने वाली कठिनाइयों और खतरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में स्थित शक्तिशाली जातियों को गिनवाया और बताया कि उसके नगर गढ़वाले थे और बहुत बड़े थे, और उस देश के निवासी बलवान थे और उन्हें पराजित करना असंभव था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वहां अनाक वंशियों को देखा जो देखने में विशाल थे, और इस कारण उस देश पर अधिकार पाने का विचार करना व्यर्थ था। अब परिस्थितियां बदल गईं। जैसे जैसे गुप्तचरों ने शैतान द्वारा उकसाई गई निराशा से भरे अपने अविश्वासी हृदयों की भावनाएं व्यक्त की, आशा और साहस का स्थान कायरतापूर्ण निराशा ने ले लिया। उनके अविश्वास ने भक्तगणों पर निराशा की परछाई डाल दी, और परमेश्वर के सामर्थ्य को, जो प्रायः चुने हुए लोगों के लिए प्रकट किया जाता था, भुला दिया गया। लोगों ने इस पर रोक कर चिंतन नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जो उन्हें इतनी दूर ले आया है वो उन्हें वो देश अवश्य देगा। उन्होंने यह भी स्मरण नहीं किया कि किस तरह फिरौन की पीछा करती हुई सेनाओं का विनाश करते हुए, समुद्र के जल को पाट कर मार्ग निकालते हुए, परमेश्वर ने विस्मयकारी ढंग से उन्हें उनके उत्पीड़नकर्ताओं से छुटकारा दिलाया था। उन्होंने परमेश्वर को इस परिस्थिति से बाहर छोड़ दिया और ऐसा जताने लगे मानो वे अपने अस्त्रों शस्त्रों की शक्ति पर ही निर्भर थे। अपने अविश्वास में उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को सीमित कर दिया और उस हाथ पर भी संदेह किया जिसने अब तक उनका सुरक्षापूर्ण मार्गदर्शन किया था, और उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध बड़बड़ाने के अपने पहले अपराध को दोहराया। अब यही हमारी ऊंची आशाओं का अंत है। यही वो देश है जिसे पाने के लिए हम मिस्र से इतनी दूर यात्रा करके आए हैं। उन्होंने अपने प्रधानों पर धोखाधड़ी का और इसराइल पर संकट लाने का आरोप लगाया। लोग निराशा में डूब चुके थे। एक वेदनापूर्ण विलाप सुनाई दिया और बड़बड़ाहट की मिलीजुली आवाजों में मिल गया। कालेब ने परिस्थिति को समझा और परमेश्वर के वचन के पक्ष में खड़े होने का साहस कर अपनी क्षमता के अनुसार अपने अविश्वसनीय सहयोगियों के दुष्प्रभाव का प्रतिकार करने का प्रयत्न किया। क्षणभर के लिए समृद्ध देश के समर्थन में कहे गए उसके आशावान और साहसपूर्ण शब्दों को सुनने के लिए लोग शांत हो गए। जो कहा गया था उसका खंडन नहीं किया। दीवारें ऊंची थीं और कनानी बलवान थे, लेकिन परमेश्वर ने इसराइलियों को वचन दिया था कि वह देश वह उन्हें देगा। कालेब ने आग्रह किया, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। लेकिन उन 10 गुप्तचरों ने हस्तक्षेप करते हुए बाधाओं को और अधिक स्याह रंगों में चित्रित किया। उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर वहां हमने नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये पुरुष गलत मार्ग पर चलकर हठपूर्वक कालेब और यहोशू के, मूसा के और परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। प्रत्येक बढ़ते कदम ने उनके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि कनान पर स्वामित्व प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयत्न को वे नाकाम कर देंगे। अपने दुष्प्रभाव को बनाए रखने के लिए उन्होंने सत्य को विकृत कर दिया। उन्होंने कहा, वो देश अपने वासियों को निगल जाता है। ये एक बुरा ही नहीं वरन झूठा वृतांत था, वो अपने आप में ही असंगत थी। गुप्तचरों ने देश को फलवंत और समृद्ध और लोगों को बड़े डील डॉल वाले बताया था। ऐसा होना असंभव था यदि वहां का वातावरण इतना अस्वास्थ्यपूर्ण होता कि वो देश अपने वासियों को निगल जाता था। लेकिन जब मनुष्य अपने हृदयों को अविश्वास को समर्पित कर देते हैं तो वे स्वयं को शैतान के अधीनस्थ कर देते हैं, और कोई नहीं जानता कि वो उन्हें कहां तक ले जा सकता है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। शीघ्र ही विद्रोह और बगावत ने अपना रूप दिखाया, क्योंकि शैतान पूर्णतया हावी हो गया और लोग अपनी सूझबूझ खो बैठे। यह भूलकर कि परमेश्वर उनके दुष्ट व्याख्यानों को सुन रहा था, और ये कि उनके क्रोध के भयंकर आवेग का बादल के स्तंभ में ढका उसकी उपस्थिति का स्वर्गदूत साक्षी था, उन्होंने मूसा और हारून को भला बुरा कहा। कड़वाहट में वे चिल्ला उठे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस भीड़ ही में मर जाते। फिर उनकी भावनाएं परमेश्वर के विरुद्ध हो गईं। यहोवा हमें उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। इस प्रकार उन्होंने न केवल मूसा को वरन परमेश्वर को भी आरोपित किया कि उन्होंने उस देश की प्राप्ति का उन्हें वचन दिया जो वे प्राप्त न कर सके, और वे इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने लिए एक प्रधान नियुक्त किया जो उन्हें उनके दासत्व और कष्टों के देश में लौटा कर ले जाए, जहां से सर्वशक्तिमान के सशक्त हाथ ने उन्हें छुटकारा दिलाया था। अनादर और पीड़ा में मूसा और हारून इसराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और वे नहीं जानते थे कि उन्हें उनके विवेकहीन और आवेगपूर्ण प्रयोजन से कैसे पीछे हटाएं। कालेब और यहोशू ने उपद्रव को शांत करने का प्रयत्न किया। दुख और क्रोध के प्रतीक के रूप में अपने वस्त्र फाड़कर वे लोगों के बीच में गए, और विद्रोहपूर्ण पीड़ा और विलाप के तूफान के शोर से अधिक ऊंची उनकी आवाज सुनाई पड़ी। जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना ही उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। कनानियों के पाप के घड़ा भर चुका था और परमेश्वर अब उनको और सहन करने वाला नहीं था। उसकी सुरक्षा के अभाव में उन पर आसानी से विजय पाई जा सकती थी। परमेश्वर की वाचा के द्वारा इज़राइल के लिए वो देश निर्धारित था,
लेकिन उन अविश्वसनीय गुप्तचरों के झूठा विवरण ग्रहण किया गया और उसके माध्यम से संपूर्ण मंडली बहकावे में आ गईं। विश्वासघातियों ने अपना काम कर दिया था। यदि केवल दो व्यक्ति अच्छी खबर लाए होते और सभी 10 लोगों ने परमेश्वर के नाम में उन्हें उस देश को पाने के लिए प्रोत्साहित किया होता, तब भी उन्होंने 10 के बजाय अपने दुष्टतापूर्ण अविश्वास के कारण उन दोनों की ही सलाह मानी होती। लेकिन वहां पर केवल 2 ही थे जो सही की पैरवी कर रहे थे, जबकि 10 विद्रोह के पक्ष में थे। उन विश्वासघाती गुप्तचरों ने कालेब और यहोशू का ऊंची आवाज में दोषारोपण किया और सारी मंडली चिल्ला उठी कि उन पर पथराव किया जाए। वे पागलपन में चिल्लाते हुए आगे बढ़े, लेकिन अकस्मात ही उनके हाथों से पत्थर गिर पड़े। एक चुप्पी सी छा गई और वे डर से कांपने लगे। परमेश्वर ने उनके घातक षड्यंत्र पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप किया। अग्नि की लपटों समान उसकी उपस्थिति ने मिलाप वाले तंबू को प्रकाशमान कर दिया। सभी लोगों ने परमेश्वर के संकेत को देखा। ये पहले से अधिक प्रभावशाली था और किसी ने अपने प्रतिरोध को जारी रखने का दुस्साहस नहीं किया। जो गुप्तचर गलत खबर लेकर आए थे, वे भय की मार से दुबक गए और सांस रोककर अपने तंबुओं में लौट गए। मूसा उठा और उसने मिलाप वाले तंबू में प्रवेश किया। प्रभु ने उससे कहा, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। लेकिन मूसा ने फिर से अपने लोगों के लिए विनती की। स्वयं के द्वारा एक शक्तिशाली जाति बनाकर वो अन्यों के विनाश की सहमति नहीं दे सका। परमेश्वर की करुणा का आग्रह करते हुए उसने कहा, अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कथन के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। परमेश्वर ने इज़राइल का तत्काल विनाश न करने का वचन दिया, लेकिन उनके अविश्वास और कायरता के कारण वो उसके शत्रुओं का दमन करने के लिए अपनी सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सका। इसलिए दया दिखाते हुए उसने सुरक्षित उपाय के रूप में उन्हें लाल समुद्र की ओर मुड़ जाने को कहा।
विद्रोह करते समय लोगों ने कहा था, भला होता कि हम इस भीड़ में ही मर जाते। अब इस प्रार्थना का उत्तर देने का समय आ गया था। परमेश्वर ने घोषणा की, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिए गए थे, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे मारे जाएंगे, उन्हें मैं निकाल ले आऊंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसे तुमने तुच्छ जाना है। और कालेब के विषय में उसने कहा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। जैसे गुप्तचरों ने अपनी यात्रा में 40 दिन व्यतीत किए थे, वैसे ही इसराइलियों को बीहर में 40 वर्ष भ्रमण करना था। जब मूसा ने लोगों को पवित्र निर्णय के बारे में बताया, तो उनका क्रोध शोक में परिवर्तित हो गया। वे जानते थे कि उनको दी गई दंडाज्ञा न्यायपूर्ण थी। वे 10 विश्वासघाती गुप्तचर भी मरी द्वारा इसराइल की आंखों के सामने मारे गए। उनके अंत में लोगों ने स्वयं का भी सर्वनाश देखा। अब वे अपने दुराचरण के लिए सच्चा प्रायश्चित करते हुए प्रतीत हुए, लेकिन वे अपनी कृतज्ञहीनता और अनाज्ञाकारिता की अनुभूति से नहीं, वरन अपने गलत तरीकों के परिणामों की वजह से दुखी थे। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर के दंडादेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उनकी स्वेच्छा फिर से जागृत हो गई और उन्होंने घोषणा की कि वे बीहड़ में नहीं लौटेंगे। उन्हें शत्रुओं के देश से प्रस्थान करने को कहने में परमेश्वर ने उनके दिखावटी समर्पण को परखा और प्रमाणित किया कि वो वास्तविक नहीं था।
वे जानते थे कि स्वयं को अपनी अविवेकपूर्ण भावनाओं से नियंत्रित होने देने में और उन्हें परमेश्वर को मार डालने की योजना बनाने में उन्होंने जघन्य अपराध किया था। लेकिन यह जानकर कि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया था जिसके परिणाम उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाले थे, वे केवल भयभीत हुए। उनके हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उन्हें वैसे ही अतिक्रमण को घटित कराने का बहाना चाहिए था। यह तब सामने आया जब परमेश्वर के अधिकार से उसने उन्हें बीहड़ में लौट जाने की आज्ञा दी। 40 वर्षों तक इसराइल को कनान में प्रवेश न करने का आदेश मूसा, हारून, कालेब और यहोशू के लिए अत्यंत निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने बिना शिकायत करे ईश्वर के निर्णय को स्वीकार किया। लेकिन जो परमेश्वर के उनके प्रति व्यवहार को लेकर शिकायत करते आ रहे थे और मिस्र लौट जाने की घोषणा करते आए थे, वे उन आशीषों के वापस लिए जाने पर, जिनका उन्होंने तिरस्कार किया था, बहुत रोए और गिड़गिड़ाए। उन्होंने अकारण ही शिकायत की थी और अब परमेश्वर ने उन्हें रोने के लिए कारण दे दिया। यदि उन्होंने पाप के लिए शोक मनाया होता जब उनके पाप उनके सम्मुख रखे गए थे, तो उन पर दंडाज्ञा की घोषणा नहीं की गई होती, लेकिन उन्होंने दंडाज्ञा के लिए शोक मनाया। उनका दुख प्रायश्चित नहीं था और उनको दी गई दंडाज्ञा को रद्द नहीं करा सकता था। रात विलाप करने में बीत गई, लेकिन भोर के साथ आशा का भी उदय हुआ। उन्होंने अपनी कायरता को मुक्ति देने का संकल्प किया। जब परमेश्वर ने उन्हें ऊपर जाकर उस देश को जीत लेने को कहा था, तब उन्होंने इनकार कर दिया था, और अब जब उसने उन्हें वापसी का आदेश दिया, तब वे उतने ही विद्रोही थे। उन्होंने उस देश को हड़प कर उस पर अधिकार करने का निश्चय किया। शायद परमेश्वर उनके काम को स्वीकार कर लेता और उनके प्रति उसके उद्देश्य में बदलाव कर देता। अपने द्वारा नियुक्त समय पर उनके कनान में प्रवेश को परमेश्वर ने उसे उनका विशेषाधिकार और कर्तव्य ठहराया था, लेकिन उनकी दुराग्रही उपेक्षा के कारण ये अनुमति वापस ले ली गई थी। शैतान ने कनान में उनके प्रवेश को बाधित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, और अब ईश्वरीय निषेधाज्ञा के होते हुए भी उसने उन्हें वही करने को उकसाया जिसको करना उन्होंने तब स्वीकार नहीं किया जब परमेश्वर ने उन्हें कहा था। इस प्रकार उस महाकपटी ने उन्हें दूसरी बार विद्रोह करवाने में विजय प्राप्त की। उन्होंने कनान पर अधिकार प्राप्त करने में अपने प्रयत्नों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करने पर अविश्वास किया था, और अभी भी वे कार्य को संपन्न करने के लिए ईश्वर की सहायता के बिना अपनी निजी क्षमता पर विश्वास कर रहे थे। हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1:41। आज्ञा उल्लंघन द्वारा वे इतनी बुरी तरह अंधे हो गए थे। परमेश्वर ने कभी भी ये आदेश नहीं दिया था कि ऊपर जाओ और लड़ो। उसका ये प्रयोजन कभी भी नहीं था कि वे युद्ध द्वारा उस देश को जीते, वरन वो चाहता था कि उसकी आज्ञाओं का पालन कर ससे प्राप्त करें। यद्यपि उनके हृदय परिवर्तित नहीं हुए थे, लोगों को गुप्तचरों के विवरण पर विद्रोह करने की मूर्खता और पापमयता का अंगीकार करने को कायल किया गया था। वे अब उस आशीष के मूल्य को देख सकते थे जो उन्होंने उतावलेपन में अस्वीकार कर दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह उनका अविश्वास ही था जिसके कारण वे कनान से बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा, हमने पाप किया है, और स्वीकार किया कि गलती उन्हीं में थी, ना कि परमेश्वर में, जिस पर उन्होंने इतनी दुष्टता से उनको दी गई प्रतिज्ञा को पूरी ना करने का आरोप लगाया था। हालांकि उनका पाप का अंगीकार करना सच्चे प्रायश्चित से प्रवाहित नहीं हुआ था, इससे उनके साथ परमेश्वर के न्याय संगत व्यवहार की पुष्टि हो गई।
प्रभु आज भी मनुष्य को अपनी न्याय संगतता को स्वीकार कराने के द्वारा उसके नाम को महिमा पहुंचाने के लिए इसी रीति से कार्य करता है। जब उससे प्रेम रखने का दावा करने वाले उसकी समझदारी पर संदेह करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं और प्रलोभन में पड़कर परमेश्वर के उद्देश्यों को पराजित करने के लिए दुष्ट दूतों के साथ मिल जाते हैं, प्रभु प्रायः परिस्थितियों को इस प्रकार वश में कर लेता है कि वास्तविक प्रायश्चित के अभाव में भी मनुष्य को अपने पाप का विश्वास हो जाता है और वो अपने द्वारा चुने हुए मार्ग की दुष्टता और परमेश्वर के उनके साथ परस्पर व्यवहार में अच्छाई को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार परमेश्वर अंधकार के कार्यों को प्रकट कराने हेतु प्रतिकार के साधनों को सक्रिय करता है, और हालांकि बुराई करने के लिए उकसाने वाली प्रवृत्ति में मूलतः परिवर्तन नहीं होता, पापों का अंगीकार किया जाता है जो परमेश्वर के सम्मान की पुष्टि करते हैं, और उसके निष्ठावान झुरकी देने वालों को, जिनका विरोध किया गया और जिनका गलत ढंग से प्रतिनिधित्व किया गया, सही ठहराता है। ऐसा ही तब होगा जब परमेश्वर का रोष अंततः उंडेला जाएगा, जब प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा कि सबका न्याय करें, वो उन सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के कामों के विषय में दोषी ठहराएगा। यहूदा आयत 14-15। प्रत्येक पापी को उसकी दंडाज्ञा की न्याय संगतता को देखकर स्वीकार कराया जाएगा।
ईश्वरीय दंडाज्ञा का मान न रखते हुए इज़राइल ने कनान पर विजय पाने की तैयारी की। युद्ध के हथियारों और सुरक्षा कवच से लैस वे स्वयं के अनुमान के अनुसार संघर्ष के लिए पूर्णतया तैयार थे, लेकिन परमेश्वर और उसके दुखी सेवकों की दृष्टि में वे बुरी तरह से अपूर्ण थे। जब लगभग 40 वर्ष पश्चात परमेश्वर ने इज़राइल को ऊपर जाकर यरीहो को अधिकृत करने का आदेश दिया, उसने उनके साथ जाने की प्रतिज्ञा की। उसकी व्यवस्था से युक्त संदूक उनकी सेनाओं के आगे ले जाया जाता था। ईश्वरीय निरीक्षण में उसके द्वारा नियुक्त प्रधान उनके प्रस्थान का निर्देशन करते थे। ऐसे मार्गदर्शन से उन पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी, लेकिन अब अपने अगुओं की औपचारिक निषेधाज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत, वाचा के संदूक के बिना और बिना मूसा के, वे शत्रु सेना का सामना करने निकल पड़े। तुरही ने चेतावनी का संकेत दिया और मूसा ने उन्हें आगाह किया, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? लेकिन ये सफल नहीं होगा, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे।
कनानियों ने उस अद्भुत शक्ति के बारे में सुना था जो इन लोगों की रक्षा करती प्रतीत होती थी, और उनके पक्ष में किए गए चमत्कारों के बारे में भी सुना था, और अब उन्होंने घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए एक शक्तिशाली सेना को बुलाया। कोई प्रार्थना नहीं की गई कि परमेश्वर उन्हें विजय प्राप्त करवाए। वे अपने अंत को पीछे मोड़ने के उद्देश्य से या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए आगे बढ़े। हालांकि युद्ध करने में वे अप्रशिक्षित थे, वे हथियारों से लैस एक विशाल समूह थे, और उन्हें आशा थी कि वे एक आकस्मिक और भयंकर चढ़ाई के द्वारा समस्त विरोध को दबा देंगे। उन्होंने धृष्टता से उस शत्रु को चुनौती दी जिन्होंने उन पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया था। कनानियों ने स्वयं को एक पहाड़ी पठार पर तैनात किया हुआ था, जहां केवल दुर्गम घाटियों से होकर और खड़ी व खतरनाक चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता था। इब्रियों की विशाल सेना की पराजय और भयानक हो सकती थी। वे धीमे धीमे कतारबद्ध होकर पथरीले मार्ग पर चले, और उन पर ऊपरी हिस्से से शत्रुओं के घातक अस्त्रों का संकट बना हुआ था। बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क कर नीचे आने लगीं, और उनका मार्ग हताहत लोगों के लहू से रंग गया। जो भी चढ़ाई करके थके हुए चोटी तक पहुंचे, उन्हें गहरे नुकसान के साथ पीछे खदेड़ दिया गया। नरसंहार के क्षेत्र पर मृतकों के शव बिखरे पड़े थे। इज़राइल की सेना पूर्णतया पराजित हो गई। विनाश और मृत्यु उस विद्रोही प्रयोग का परिणाम था।
आत्मसमर्पण के लिए विवश आखिरकार बचे हुए लोग लौटे और प्रभु के सामने रोए, लेकिन प्रभु ने उनकी आवाज नहीं सुनी। व्यवस्था विवरण 1:45। अपनी संकेतक विजय के द्वारा इज़राइल के शत्रु, जो अब तक उस शक्तिशाली सेना के आगमन की भयभीत होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आत्मविश्वास के साथ उनका प्रतिरोध करने को प्रेरित हुए। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए चमत्कारों से संबंधित जो भी वृतांत उन्होंने सुने थे, उन्हें वे अब असत्य मानने लगे, और उन्हें लगा कि डरने का कोई कारण नहीं था। इज़राइल की उस प्रथम पराजय ने कनानियों को साहस और संकल्प से प्रेरित करके विजय प्राप्त करने की कठिनाइयों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इज़राइल के लिए कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि वे अपने शत्रुओं के सामने से पीछे हट जाएं, क्योंकि वे जान गए कि वहां एक संपूर्ण पीढ़ी का मृत्यु पश्चात गाला जाना निश्चित था।